So today is a very auspicious day. Today is the festival of Vasant Panchami, and we have appearance day and disappearance day of our exalted acharyas. And this auspicious day has become more auspicious with the association of His Holiness Bhakti Gauravani Swami Maharaj. Hari Bol. We are very extremely fortunate that Maharaj is giving us this wonderful association today. Last year also Maharaj was very kind enough to come here and bless us. A brief introduction of Maharaj. Maharaj appeared in Germany in 1951, and when he was just 20, serving as a mandatory army service in Germany, he met his own devotees. They gave him a book called Ishobhnishad that changed Maharaj's life. Maharaj started practicing Krishna consciousness while he was still serving the army. And the devotees helped him and gave him one very wonderful engagement. The first engagement Maharaj got in Srila Prabhupada's mission was to translate second canto of Srimad Bhagavatam in Germany. So after that Maharaj never looked back. He got initiated in 1972. He got the name His Grace Ved Vyas Prabhu. And then he translated all of Srila Prabhupada's books in Germany. Then he was sent to Spain in 1981. There Maharaj was pioneer in getting translated all the books of Srila Prabhupada in the Spanish language. You oversee. Yeah, and Maharaj was managing the temples in Spanish Spain and established the European Deputy Office in Spain. Maharaj wrote a book called Srila Prabhupada and His Disciples in Germany in 1996, and in 2014 His Grace Ved Vyas Prabhu became His Holiness Bhakti Gauravani Swami Maharaj. At present, Maharaj is an initiating guru, and Maharaj is president of New Vrindavan Mandal Form Community, and is also a Euro RGB commissioner in Spain. And Maharaj is preaching in Western Europe, South America, and in India. For the last few years, Maharaj in Mayapur, Maharaj is always taking a seminar on Vaishnava songs, or 3-day seminars. So, if any of you can go to Mayapur and attend Maharaj's seminar, it would be wonderful. We could see how the Maharaj sings so devotionally the song before this lecture. So, we are extremely thankful to His Holiness Bhakti Gauravani Swami Maharaj to come here and bless us on this most auspicious day. And I will ask you all to give up to your mobile. Hare Krishna.
Hare Krishna.
सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए. बहुत सुंदर मंदिर है.
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसादयदेशतरिणे. सो टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ events, in one sense, or how to call it, different acharyas and devotees appeared, disappeared, and the beginning of spring is
celebrated.
Yeah, we have Vasant Panchami, then Saraswati Puja.
Saraswati Puja.
You understand that. The appearance of Srimati Vishnupriya Devi.
Srimati Vishnupriya Devi ji ka avirbhav divas.
The wife of Nimai Pandit.
Nimai Pandit.
Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Nimai Pandit ki bharya Sri Chaitanya Mahaprabhu ki.
And we have more appearances and one disappearance, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur.
Aur aise anek चार्यों के आविर्भाव दिवस है और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है.
A previous acharya who wrote an important prayer.
हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना.
In all his temples we chant this for Mangal Arti, the Gur Vashtaka.
प्रत्येक इस्कॉन मंदिरों में सुबह हम इस प्रार्थना को बोलते हैं जो गुरु अष्टकम है.
And then we have different appearances. We have Pundarik Vidyanidhi.
और आज पंडित विद्यानिधि जी का भी आविर्भाव है.
Who is an associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है.
श्री चैतन्य महाप्रभु considered him like his father.
श्री चैतन्य महाप्रभु उनको पिता के समान मानते थे.
Because it is said in Krishna Lila he is the father of Srimati Radharani, Vrishabha Bhanu.
क्योंकि कृष्ण लीला में वो श्रीमती राधा रानी के पिता है ऋषभानु.
And then also the appearance of Raghunandana Das Thakur.
और आज श्री रघुनंदन दास ठाकुर जी का भी आविर्भाव दिवस है.
Who is also a branch of the Chaitanya tree.
जो चैतन्य वृक्ष की एक शाखा है.
And then we have the appearance of Srila Raghunath Das Goswami.
और आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी आविर्भाव दिवस है.
And with your permission, I will speak mainly about him.
और आज के इस लेक्चर में महाराज बता रहे हैं मैं मुख्यतः उनके बारे में बोलूंगा.
You have Chaitanya Charitamrita. We've tried to get Ancha Lila chapter 6. So, in Ancha Lila chapter 6, the title is The Meeting of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Raghunath Das Goswami.
Ancha Lila adhyay 6, jiska shirshak hai Shri Raghunath Das Goswami aur Sri Chaitanya Mahaprabhu ka milan.
So, the introductory verse, as many times Krishna Das Kaviraj Goswami composed a Sanskrit verse.
Srila Krishna Das Kaviraj Goswami anek adhyay ki shuruaat mein ek Sanskrit shlok ka nirman karte hain.
So I will chant it for you.
Jisko main uchcharan karunga aap sabke liye.
Kripa gunaryak kugriganda kupat udritya bangriya raghunatha dasam nyasya swarupe vidadentar angam shri krishna chaitanyam amun prapadye. With the ropes of his causeless mercy, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu employed a trick to deliver Raghunath Das Goswami from the blind well of contemptible family life. He made Raghunath Das Goswami one of his personal associates, placing him under the charge of Swarup Damodar Goswami. I offer my obeisances unto him.
Srila Krishna Das Kaviraj Goswami is prakar likhte hain. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहतु की कृपा रूपी रस्सी से रघुनाथ दास गोस्वामी को घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया. उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखकर अपना निजी संगी बनाया. मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ.
So then in the first 11 verses, it's described how Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri is together with all his devotees.
पहले 11 श्लोकों में ये वर्णन आता है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में अपने संगी गणों के साथ हैं.
And then text number 12, Krishna Das Kaviraj Goswami says, the Lord thus enjoyed his life with his devotees. O devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, now hear how Raghunath Das Goswami met the Lord.
और फिर प्यार संख्या 12 में आता है, इस तरह महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जीवन का आनंद लेते थे. हे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब सुनो कि रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार महाप्रभु से मिले.
When Raghunath Das, during his family life, went to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu at Shantipur, the Lord gave him worthy instructions by his causeless mercy.
जब गृहस्थ जीवन के समय रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने शांतिपुर गए, तब महाप्रभु ने अपनी अहतु की कृपावश उन्हें योग्य शिक्षाएं दी.
Instead of becoming a so-called renunciant, Raghunath Das, following the instructions of the Lord, returned home and played exactly like a pounce and shillings man.
तथा कथित वैरागी बनने के स्थान पर रघुनाथ दास महाप्रभु के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने घर लौटे और विषयी व्यक्ति की तरह कार्य करने लगे.
Raghunath Das was inwardly completely renounced, even in family life, but he did not express his renunciation externally. Instead, he acted just like an ordinary businessman. Seeing this, his father and mother were satisfied.
रघुनाथ दास अपने गृहस्थ जीवन से भी भीतर से पूरी तरह विरक्त थे, किंतु उन्होंने अपने वैराग्य को बाहर प्रकट नहीं किया. उल्टे वे सामान्य व्यापारी की तरह कार्य करते रहे. ये देखकर उनके माता पिता बहुत संतुष्ट थे।
This is interesting because sometimes we, of course, we do this. We, when we preach, we try to convince people to become detached from the material world.
ये बहुत रुचिकर है क्योंकि अक्सर देखा गया है जब हम प्रचार करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए बहुत आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो पूर्ण रूप से वैरागी हो जाए।
And we have seen also Srila Prabhupada do this, depending on the audience and the circumstance, he could be very heavy.
और हमने देखा है श्रीला प्रभुपाद भी किस प्रकार का ऑडियंस बैठा है और परिस्थिति देखते हुए कभी कभार वो बहुत ही भारी बोलते थे।
And we have heard that his spiritual master Srila Bhaktisiddhanta also was like that.
और हमने सुना है कि उनके जो गुरु श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वैसे थे।
So much so that some of his, even of his disciples, were not so comfortable with his preaching.
और इतने भारी थे कि उनके कई शिष्य उनके प्रचार शैली से comfortable नहीं थे।
Because you're never comfortable. So they call it axe preaching.
और तो कहते थे कुल्हाड़ी के कुल्हाड़ी वाला प्रचार।
And those who were not agreeing actually internally, they did not agree this type of preaching. Prabhupada said they fell down.
और जो अंदर से इस बात इस प्रचार शैली से सहमत नहीं थे वो आगे जाकर उनका पतन भी हुआ।
We also know his spiritual master, Srila Gaurakishordas Babaji, there are some anecdotes where he also preaches quite strongly.
और ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें उनके गुरु श्रीला गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज के जीवन में कि जब उन्होंने बहुत ही भारी रूप से बहुत ही शक्तिशाली रूप से प्रचार किया।
And we know that Sri Chaitanya Mahaprabhu was or could be very strict also in his principles.
और हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने सिद्धांतों में बहुत कड़े हो सकते हैं।
Nevertheless, we also have seen that Srila Prabhupada, depending on the circumstance and the person, he could also preach in a different way.
परंतु हमने ये भी देखा है कि परिस्थितियों और व्यक्ति के हिसाब से श्रीला प्रभुपाद एक अलग तरीके से प्रचार भी करते थे।
And we also see here Sri Chaitanya Mahaprabhu, he did not tell Raghunath, yes, give up everything and immediately join me.
और यहाँ पे हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को ये नहीं कहा कि तुरंत सब कुछ छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ।
Like also the Kurma Brahmana, if you remember, when he wanted to come along with Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, no, you stay at home and preach there.
जैसा कि कूर्म ब्राह्मण के प्रसंग में आता है अगर आपको याद हो कि वो महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे महाप्रभु ने कहा नहीं कि आप अपने स्थान पर रहिए और वहीं पर प्रचार कीजिए।
Nevertheless, as it is said here, inwardly, Raghunath Das was a renounce. He was renounced.
फिर भी यहाँ पर कहा गया है कि रघुनाथ दास भीतर से पूरी तरह विरक्त थे।
But sometimes it may be due to circumstances one may has to play a role in the material world.
कभी कभार परिस्थितियों के कारण हो सकता है किसी को भौतिक जगत में किसी पद के अनुसार कार्य करना पड़े।
But the heart should not be there.
परंतु जो उसका हृदय है उस भौतिक जीवन में नहीं होना चाहिए।
Which is not so easy. Externally one may appear to be like a normal person, but internally one is actually detached on one hand and devoted, trying to be devoted to Krishna.
तो हो सकता है शायद बहुत आसान ना हो परंतु बाह्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करना परंतु आंतरिक रूप से वैराग्य को अनुकूल करना और कृष्ण में अपने मन को लगाना।
We are also celebrating the appearance of Pundarik Vidyanidhi. We spoke about him. He apparently was a very opulently living person.
आज हम पुंडरिक विद्यानिधि का आविर्भाव दिवस भी मना रहे हैं तो बाह्य रूप से वो बहुत ही ऐश्वर्यशाली व्यक्ति थे।
So much so that Gadadhar Pandit thought he was a materialist.
और बाह्य रूप से उनमें इतना ऐश्वर्य दिखता था कि गदाधर पंडित ने जब उनको देखा पहली बार तो उन्हें लगा कि ये साधारण भौतिकवादी व्यक्ति है।
He was when he met him for the first time, he had silk cushions and very nicely combed hair with oil prepared and like that.
तो जब वो पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने देखा कि कैसे रेशमी का उनके बिस्तर पर वो लेटे हुए हैं और उनके बाल बहुत ही सुगंधित तेलों से शोभेमान हैं, कितने लोग चामर कर रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने देखा.
But then when he heard a specific verse from Srimad Bhagavatam, he forgot about everything and he ripped apart his silk cloth and started to dance and
परंतु जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक को सुना तो तुरंत वो भाववेश में आ गए और अपने उन्हीं रेशमी कपड़ों को फाड़ कर बिल्कुल लोटपोट करके नृत्य करने लगे.
So then Karnataka Pandit realized that he had made a mistake by actually criticizing him within his mind, and then he became his disciple.
तो गदाधर पंडित को तब एहसास हुआ कि उन्होंने उनके प्रति अपराध किया है मन में उनकी इस प्रकार निंदा करके, तो बाद में फिर वो उनके शिष्य बने.
So sometimes that may be that externally a devotee is behaving in a certain way, but internally he is actually very advanced.
तो हो सकता है अक्सर बाह्य रूप से व्यक्ति आम व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा हो, परंतु आंतरिक रूप से वो बहुत ही प्रगतिशील है, उच्च स्थिति पर है.
One has to be careful to sometimes jump to conclusions that may be wrong.
तो इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए किसी प्रकार के कंक्लूजन पे आने से.
At the same time, and therefore it's so difficult, normally the external behavior and the internal consciousness should be matching.
और ये भी है कि जो बाह्य रूप से व्यवहार है और जो अंदर से जो चेतना है, ये दोनों मैच करने चाहिए.
Yes.
एक ही लाइन में हमारे.
Acharya means somebody who is teaching by his example how he is behaving.
आचार्य का अर्थ है जो अपने आचरण से सिखा रहा है.
So anyway, we'd continue with the story. When he received a message that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu had returned from Mathura city, Raghunath Das endeavored to go to the lotus feet of the Lord.
जब उन्हें यह संदेश मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा पुरी से लौट आए हैं, तो रघुनाथ दास ने महाप्रभु के चरणों तक जाने का प्रयास किया.
So then there is a whole description how the uncle and the father, how they were actually, but they were very rich people. They were tax collectors.
तो आगे वर्णन आता है किस प्रकार से जो उनके पिता और जो उनके ताऊ थे बहुत ही अमीर व्यक्ति थे.
So there was some discrepancy when they were supposed to pay the government, and then Raghunath Das was arrested.
और इसमें कुछ उन्होंने हेरा फेरी की थी जितना वो टैक्स वो वहां उस समय जो सरकार को देते थे, तो इसलिए बाद में जाकर रघुनाथ दास को गिरफ्तार किया गया.
So let's skip all this. Yeah, he was arrested by the Chowdhury. He was a Muslim and he wanted to beat him, but Raghunath Das was such an innocent devotee in one sense that he couldn't do it.
तो जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया उस मुस्लिम अधिकारी द्वारा, तो और उनको किसी रूप से पनिश करना चाहता था, उनको सजा देना चाहता था, परंतु उन्होंने इतने इस प्रकार से व्यवहार किया कि उस मुसलमान का हृदय पिघल गया.
So then we go to text 34. When the matter is settled, Raghunath Das arranged a meeting between his uncle and this Chowdhury, and the matter was settled and everything was peaceful. So.
तो जब हम 34वें प्यार पे जाते हैं, जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ताऊ तथा चौधरी की भेंट का प्रबंध किया.
So in this way, Raghunath Das passed 1 year exactly like a first class business manager, but the next year he again decided to leave home.
तो इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरा एक वर्ष अच्छे व्यापारी प्रबंधक के रूप में बिताया, किंतु अगले वर्ष उन्होंने पुनः घर छोड़ने का निश्चय किया.
So he got up alone one night and left, but his father caught him in a distant place and brought him back.
एक रात वह अकेले उठे और चल पड़े, किंतु उनके पिता ने दूर स्थान पर उन्हें पकड़ लिया और वह उन्हें लौटा ले आए.
So this became almost a daily affair. Raghunath would run away from home and his father would again bring him back. Then Raghunath Das's mother spoke to his father as follows.
ये प्राय प्रतिदिन का व्यापार बन गया था. रघुनाथ घर से भाग जाते और उनके पिता उन्हें फिर लौटा ले आते. तब रघुनाथ दास की माता ने उनके पिता से कहा,
Our son has become mad.
हमारा पुत्र पागल हो गया है.
Just keep him by binding him with ropes.
उसे रस्सी से बांध कर रखो.
His father, being very unhappy, replied to her as follows.
उनके पिता अत्यंत दुखी होकर माता से बोले,
Raghunath Das, our son, has opulences like Indra, the heavenly king, and his wife is as beautiful as an angel. Yet all this could not tie down his mind.
हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग के राजा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है और उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी ये सब उसके मन को बांध नहीं सका.
How then could we keep this boy home by binding him with ropes? It is not possible even for one's father to nullify the reactions of one's past activities.
तो फिर हम इस बालक को रस्सियों से बांध कर घर पर कैसे रख सकते हैं? किसी के पिता के लिए भी ये संभव नहीं है कि किसी के विगत कर्मों के फल को निरस्त कर दे.
Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has fully bestowed his mercy on him. Who can keep home such a madman, Batula of Chaitanya Chandra?
श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूर्ण कृपा की है. चैतन्य चंद्र के पागल को घर पर कौन रख सकता है? चैतन्य चंद्रेर बातुला.
Then Raghunath Das considered something in his mind, and the next day he went to Nityananda Goswami.
तब रघुनाथ दास ने अपने मन में कुछ विचार किया और अगले दिन वे नित्यानंद गोसाई के पास गए.
In the village of Panihati, Raghunath Das obtained an interview with Nityananda Prabhu, who was accompanied by many kirtan performers, servants and others.
Panihati गांव में रघुनाथ दास की भेंट नित्यानंद प्रभु से हुई, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले सेवक तथा अन्य लोग थे.
Sitting on a rock under a tree on the bank of the Ganges, Lord Nityananda seemed as effulgent as hundreds of thousands of rising suns.
गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु करोड़ों उदय होते सूर्यों के समान तेज युक्त प्रतीत हो रहे थे.
Many devotees sat on the ground surrounding him. Seeing the influence of Nityananda Prabhu, Raghunath Das was astonished.
उन्हें घेर कर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए थे. नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए.
Raghunath Das offered his obeisances by falling prostrate at a distant place, and the servant of Nityananda Prabhu pointed out, "There is Raghunath Das offering you obeisances."
रघुनाथ दास ने दूर स्थान पर ही दंड की तरह गिरकर नमस्कार किया और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने इंगित किया, रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है.
Hearing this, Lord Nityananda Prabhu said, "You are a thief. Now you have come to see me. Come here. Today I shall punish you."
ये सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, अब तुम मुझे मिलने आए हो. यहां आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा.
The Lord called him, but Raghunath Das did not go near the Lord. Then the Lord forcibly caught him and placed his lotus feet upon Raghunath Das's head.
प्रभु ने उन्हें बुलाया, किंतु रघुनाथ दास उनके निकट नहीं गए. तब प्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके सिर पर अपना चरण कमल रख दिया.
Lord Nityananda was by nature very merciful and funny. Being merciful, he spoke to Raghunath Das as follows.
नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा विनोदी थे. दयालु होने के कारण वे रघुनाथ दास से इस प्रकार बोले,
You are just like a thief, for instead of coming near, you stay away at a distant place. Now that I have captured you, I shall punish you.
तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो. अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा.
Make a festival and feed all my associates yogurt and chipped rice. Hearing this, Raghunath Das was greatly pleased.
तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चिड़वा खिलाओ. ये सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए.
So that's the famous Chiradari festival.
The प्रसिद्ध दही चिड़ा उत्सव है.
And that is explained in the next verses, which we will skip.
और आगे इस उत्सव का वर्णन आता है.
let's see. It's a nice description of how this festival is celebrated, and all the people bringing pots and soak the rice in the pots.
तो आगे इसका वर्णन आता है कि इस उत्सव को किस प्रकार से मनाया गया, कैसे लोग बड़े बड़े बर्तन लाए और चिड़वा बनाया गया.
So then, text 77.
इसके बाद प्रयास संख्या 77.
When chipped rice had been served to everyone, Lord Nityananda Prabhu in meditation brought Sri Chaitanya Mahaprabhu.
जब हरे को चिड़वा परोसा जा चुका तो नित्यानंद प्रभु ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आए.
From each and every pot, Lord Nityananda Prabhu took one morsel of chipped rice and pushed it into the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu as a joke.
श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिड़वे का एक ग्रास लिया और उसे परिहास वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस दिया.
Sri Chaitanya Mahaprabhu, also smiling, took a morsel of food, pushed it into the mouth of Nityananda, and laughed as he made Lord Nityananda eat it.
Sri Chaitanya Mahaprabhu ne bhi haste haste bhojan ka ek gaur liya, usse Nityananda Prabhu ke muh mein dal diya, aur Nityananda ko khilate samay hasne lage.
In this way, Lord Nityananda was walking through all the groups of eaters, and all the Vaishnavas standing there were seeing the fun.
इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे थे और वहां पर खड़े सारे वैष्णव ये कौतुक देख रहे थे.
No one could understand what Nityananda Prabhu was doing as he walked about. Some, however, who were very fortunate, could see that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was also present.
जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तब वे क्या कर रहे थे ये कोई नहीं समझ सका, किंतु कुछ लोग जो बड़े भाग्यशाली थे ये देख सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां उपस्थित थे.
Then Nityananda Prabhu smiled and sat down. On his right side, he kept four pots of chipped rice that had not been made from boiled paddy.
तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए. उन्होंने अपनी दाहिनी ओर चार पात्र रखे जिनका चिड़वा उबले चावल से नहीं बनाया गया था.
Lord Nityananda offered Sri Chaitanya Mahaprabhu a place and had him sit down. Then together the two brothers began eating chipped rice.
Nityananda Prabhu ne Sri Chaitanya Mahaprabhu ko sthan diya aur unhe bithaya. Tab dono bhai ek saath chidwa khane lage.
So then there's this description and text 88. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu are extremely merciful and liberal. It was Raghunath Das's good fortune that they accepted all these dealings.
Shri Chaitanya Mahaprabhu tatha Nityanand Prabhu atyant dayalu tatha udar hai. Ye to Raghunath Das ka saubhagya tha ki unhone ye sab vyavhar swikar kar liye.
So then Raghunath Das Goswami, he purchases different sweets from the shopkeepers.
Tab Raghunath Das Goswami ne कई दुकानदारों से मिठाई खरीदी.
एंड एट द एंड नित्यानंद प्रभु गिव्स हिम द फूड रिमेनिंग इन द दिस फोर पॉट्स ही हैड केप्ट. ही गिव्स दिस टू रघुनाथ दास.
और अंत में नित्यानंद प्रभु ने जो चार बर्तनों में जो बचा था उसको रघुनाथ को दिया.
सो देन After text number 99, after receiving the remnants of food left by Lord Nityananda Prabhu, Raghunath Das, who was greatly happy, ate some and distributed the rest among his own associates.
Nityananda Prabhu ke bache bhojan ka shesh paakar atyant prasann Raghunath Das ne kuch to khaya aur shesh apne niji sangiyon mein baant diya.
See. So later on, Raghunathdas Goswami, finally he escapes home, he goes away and joins Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri.
और बाद में हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी अंततः वो घर छोड़कर भागे और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले.
And first of in the first later his father of course he finds out what has happened.
बाद में निश्चित रूप से उनके पिता को पता लगा कि क्या हुआ है.
And in the beginning he sends money so his son is not in trouble.
और शुरुआत में वह धन भेजते थे रघुनाथ के लिए ताकि जो उनका पुत्र है उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो.
And in the beginning, Raghunath Das, he accepts it and he uses it to organize festivals for the devotees.
शुरुआत में वह उस धन को स्वीकार करते थे और इसका इस्तेमाल करते थे अलग उत्सवों का आयोजन करने के लिए जिसमें वैष्णवों की सेवा करते थे.
But then after some time, and of course everybody is invited and also Sri Chaitanya Mahaprabhu is invited, and then suddenly there's no more invitation to festivals.
और इस पर वह चैतन्य महाप्रभु को भी आमंत्रण देते थे परंतु कुछ समय बाद उनको आमंत्रण मिलना बंद हो गया.
And Chaitanya Mahaprabhu inquires, what has happened? Raghunath Das is not organizing any more festivals?
तो महाप्रभु ने बाद में पूछा कि क्या हुआ रघुनाथ अब कोई उत्सवों का आयोजन नहीं कर रहा.
And then he is informed, no, he doesn't accept any more the money from his father, so no more festivals.
तो फिर उनको सूचित किया गया कि नहीं अब वो अपने पिता से धन स्वीकार नहीं कर रहे इसलिए अब और ज्यादा उत्सव आयोजन नहीं कर रहे.
And then Chaitanya Mahaprabhu said, oh, very good.
चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न उनका ओ बहुत अच्छा.
Actually, Raghunath Das Goswami is known for his renunciation, for his detachment from the material world.
Srila Raghunath Das Goswami jaane chahte hain apne vairagya ke liye.
So now I have to look and help me from memory. After this, he goes and begs, right, from the shopkeepers. Yes, that's the next step. So you will see how he becomes more and more renounced.
तो अब अगला जो उन्होंने कदम उठाया अब वो भिक्षाटन करते थे.
So that is also a bona fide way of sustenance for a renunciant to go madhukari and just beg for a little bit from different persons.
तो वैरागी के लिए ये एक प्रमाणिक विधि है अपना आहार प्राप्त करने के लिए कि किस प्रकार वो जाकर भिक्षा मांगे.
So then after some time he stopped doing that also.
फिर कुछ समय बाद उन्होंने ये करना भी बंद कर दिया.
Then the next phase is, I think he stands at the gate and just accepts whatever is given to him, right?
फिर अगले कदम में वो कहीं नहीं जाते थे, सिर्फ सिंह द्वार पर खड़े होते थे और कुछ भी अगर उन्हें मिल जाए, सिर्फ उसी को स्वीकार करते थे.
So that means now you're just depending on whoever comes and by Krishna's grace gives you. If nobody gives, you don't have.
तो अब आप इस प्रकार से आश्रित हैं कि जो भी कोई आए कृष्ण अगर उनको प्रेरित करें आपको भोजन देने के लिए तो आप स्वीकार करेंगे अन्यथा आप कुछ नहीं खाएंगे.
That's more renounced than you going around and trying to get something by begging.
ये से उच्च श्रेणी है कि आप जगह जगह जाकर मांगकर कुछ प्राप्त करना चाहें.
But then Raghunath Das Goswami is thinking, but this is like a prostitute.
तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर सोचते हैं कि ये तो एक वैश्य की भांति है.
You're standing there and you see people go by and you think, oh, maybe this one will come, or maybe that one will come, or he didn't come, maybe the next one will come.
कि आप वहां पर खड़े हैं और आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं कि शायद ये व्यक्ति मेरे को देगा, ये चला गया ठीक है अगला व्यक्ति शायद मेरे को दे.
You're a beggar, you're sitting there, somebody is coming, oh, maybe he will give a little bit.
क्या भिखारी हैं और एक जगह बैठे हैं और सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति जा रहा है ये शायद कुछ इधर मुड़कर कुछ डालेगा.
So then he also gave up that practice.
तो फिर वो उन्होंने ये अभ्यास भी छोड़ दिया.
And finally he collects the rice that is thrown out and even the cows don't eat because it's in such actually bad condition.
तब उन्होंने उन चावलों को वो इकट्ठा करते थे जिनको फेंक दिया गया है, और जहां तक कि गाय भी उन्हें स्वीकार नहीं करती क्योंकि वो इतनी बुरी परिस्थिति में होते
थे,
उन्हीं को वो धोते थे और उसी को पा लेते थे.
What also we know, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him a Govardhan Shila.
और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक गोवर्धन शिला भी दी.
And it is said that the Raghunath Das Goswami was as strict as the lines on a stone that you cannot change. Once there are some lines carved in stone, there's no way to change that.
बताया गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी नियमों के पालन में इतने कड़े थे कि जिस प्रकार से पत्थर में लकीर खींच दी गई हो, जैसे पत्थर में खींची हुई लकीर को बदला नहीं जा सकता, उनके जो नियम है जिसको पालन करते थे उनसे उनको कोई हटा नहीं सकता था.
Let's see whether we find this quickly. Yes, this is in also at the end of chapter 6 is a long chapter. Text number
309.
Who could list the unlimited transcendental attributes of Raghunath Das? His strict regulative principles were exactly like lines on a stone.
भला रघुनाथ दास के असंख्य दिव्य गुणों की गणना कौन कर सकता है? उनके कठोर नियम पत्थर पर लकीर के समान थे.
पशनेरा रघुनाथ दास
नियमों का इतना कड़ाई से पालन करते थे कि उसकी तुलना पत्थर पर खींची लकीरों से की जाती है.
As such lines cannot be erased at any time, so the regulative principles observed by Sri Raghunath Das Goswami could not be changed under any circumstances.
जिस तरह ऐसी लकीरें कभी भी मिटाई नहीं जा सकती, उसी तरह रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता था.
Next verse. Raghunath Das spent more than 22 hours out of every 24 chanting the Hare Krishna Maha Mantra and remembering the lotus feet of the Lord.
Raghunath Das 24 ghante mein se 22 ghante se adhik Hare Krishna Maha Mantra ka jap karne mein tatha Bhagwan ke charan kamlon ka smaran karne mein bitate.
He ate and slept for less than 1 hour and a half, and on some days that also was impossible.
वे डेढ़ घंटे से भी कम समय खाने तथा सोने में बिताते, और किसी दिन तो वे भी संभव नहीं हो पाता था.
Topics concerning his renunciation are wonderful. Throughout his life, he never allowed his tongue sense gratification.
उनके वैराग्य से संबंधित कथाएं अद्भुत हैं. उन्होंने जीवन भर अपनी जीभ की तृप्ति नहीं होने दी.
He never touched anything to wear except a small torn cloth and a patchwork wrapper. Thus he very rigidly executed the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
उन्होंने पहनने के लिए एक छोटे से फटे वस्त्र तथा लपेटने के लिए गुदड़ी की अतिरिक्त किसी वस्तु का स्पर्श नहीं किया. इस तरह उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का कठोरता के साथ पालन किया.
Now, there was an order before. Now you have to help me again. What is it? Grana katana shunile. So, let's hear it. So many know. Whoever knows it has a loud voice. Yes, please. And translation.
ग्रामे कथा न कहिबे, ग्रामे कथा न सुनिबे, भालो न खाइबे और भालो न परिबे.
Translation.
ग्रामे कथा विषय वार्ता न सुन.
We should not hear. Ordinary. Talking.
Then. And we should not speak ordinary talkings.
Right.
do not take a very nice prasad.
Very nice, yes.
Opulent.
So opulent.
Opulent and palatable dishes.
Okay, so Srila Prabhupada's purport. The principle of very rigidly carrying out the order of the spiritual master must be observed. Text 3:12.
Guru ke aadesh ka palan kathorta purvak karna chahiye.
The spiritual master gives different orders to different people.
Guru विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न आदेश देता है.
For example, Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Jiva Goswami, Rupa Goswami, and Sanatan Goswami to preach.
उदाहरण के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को प्रचार करने के आदेश दिए.
And he ordered Raghunath Das Goswami to strictly follow the rules and regulations of the renounced order.
और रघुनाथ दास गोस्वामी को सन्यास आश्रम के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए.
All six Goswamis strictly followed the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
छह गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का कड़ाई से पालन करते थे.
This is the principle for progress in devotional service.
भक्ति में उन्नति का यही नियम है.
After receiving an order from the spiritual master, one must strictly try to execute the order. That is the way of success.
गुरु से आदेश मिलने पर मनुष्य को उसका कड़ाई से पालन करने का प्रयास करना चाहिए. यही सफलता की विधि है.
Text 3:13. Now again, the character of Raghunath Das. Whatever he ate was only to keep his body and soul together. And when he ate, he would reproach himself, saying the following.
वह जो भी खाते शरीर तथा प्राण की रक्षा मात्र के लिए होता था, और जब वह खाने बैठते तो अपनी भर्त्सना इन शब्दों में करते.
If one's heart has been cleansed by perfect knowledge and one has understood Krishna, the supreme Brahman, he then gains everything. Why should such a person act like a debauchee by trying to maintain his material body very carefully?
यदि किसी का हृदय पूर्ण ज्ञान द्वारा शुद्ध हो चुका है और उसने परम ब्रह्म कृष्ण को समझ लिया है तो उसे हर वस्तु प्राप्त हो जाती है. भला ऐसे व्यक्ति को अपने भौतिक शरीर का अच्छी तरह पोषण करने का प्रयास करते हुए लंपट की तरह क्यों कार्य करना चाहिए?
Purport. This verse was spoken by Narada to Yudhishthira Maharaj regarding a householder's liberation from material bondage.
ये श्लोक श्रील नारद मुनि ने श्री युधिष्ठिर महाराज से गृहस्थ की भव बंधन से मुक्ति के विषय में कहा था.
On the spiritual platform, one does not unnecessarily care for the body.
आध्यात्मिक स्तर पर शरीर के लिए व्यर्थ चिंता नहीं की जाती.
It doesn't mean you don't care for the body, eh? You are not unnecessarily.
इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका हम
yes.
शरीर का ध्यान ना रखें. यहाँ पर है व्यर्थ चिंता नहीं की जाती, व्यर्थ में.
Actually, not caring for the body is also an offense.
शरीर का ध्यान ना रखना भी एक अपराध है.
Because it's not your body.
क्योंकि ये आपका शरीर नहीं है.
You already, especially for devotees, we have dedicated the body for the service of the Lord.
विशेषकर भक्तों के लिए जिन्होंने अपने शरीर को समर्पित कर दिया है भगवान की सेवा में.
So now you have to take care of it so it can render nice service.
तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है क्योंकि इसी शरीर से आप भगवान की सेवा कर सकें.
Otherwise you're also like a thief. You're a thief. You take something which is not yours and try to do whatever you want with it. No.
अन्यथा आप भी चोर की भांति हैं कि आपने किसी और की संपत्ति हड़प ली है और अपने मन से उसके साथ जो चाहे वो कर रहे हैं.
Srila Narottam Das Thakur has said, Deha smriti nahi yar sansara bandana kahatar. One who is spiritually situated does not think that he is the body.
Srila Narottam Das Thakur ne kaha hai, Deha smriti nahi yar sansara bandana kahatar. Adhyatmik pad ko prapt vyakti ye nahi sochta ki vah shareer hai.
Therefore he can transcendentally execute severe penances in the renounced order of life.
Isliye vah sanyas ashram mein दिव्य रूप में कठिन तपस्या कर सकता है.
The best example of such renunciation is Raghunath Das Goswami.
ऐसे वैराग्य का सर्वोत्तम उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी है।
So, we could go on and on, but I think we have come to 9 o'clock. So, thank you for your attention. I think it's a very auspicious event, especially remembering the six Goswamis and in this case specifically Raghunath Das Goswami.
तो कई चीजें चर्चित की जा सकती हैं, परंतु अभी जैसे समय 9 बज गया है, तो आज बहुत ही शुभ दिन है, विशेषकर श्री गोस्वामियों का स्मरण करना, विशेषकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में चर्चा करना।
They have a very special position in our sampradaya.
हमारे संप्रदाय में इनका बहुत ही विशेष स्थान है।
They are direct disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
श्री चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल सीधे शिष्य हैं।
And we are considered Rupanugas. We are following Rupa Goswami.
और रूपानुगा के रूप में हम श्री रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हैं।
Who has given us nectar of devotion?
जिन्होंने हमें भक्ति रसामृत सिंधु दी है, उपदेशामृत,
very important instructions for the execution of devotional service.
बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश भक्ति को करने के लिए।
सनातन गोस्वामी also हरि भक्ति विलास।
शिला सनातन गोस्वामी ने भी हरि भक्ति विलास।
जीवा गोस्वामी इज संदर्भस।
शिला जीव गोस्वामी ने संदर्भ।
And the example of Raghunath Das Goswami is how to become detached from material life.
और शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ज्वलंत उदाहरण से प्रस्तुत किया है कि कैसे भौतिक जगत से विरक्त हो।
वंदे रूप सनातन, this is the prayers to the six Goswamis. Actually, we should have, but we can't sing it. There, Srinivasacharya gives a very beautiful description of different aspects of the lives and characteristics of the six Goswamis.
शिला श्रीनिवास आचार्य ने बहुत ही सुंदर रूप से इन छह गोस्वामियों के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर इस षट गोस्वामी अष्टकम का संकलन किया है।
Yeah, if you have the time, at least read it, and if you can, also chant it. Very auspicious prayer, Prabhupada was chanting many times.
तो अगर आपको समय मिले तो इसका इसके इसको जरूर पढ़िए, और अगर इसके अनुवाद को, और अगर आपको गाना आता है तो इसको निश्चित रूप से गाइए भी। शिला प्रभुपाद अक्सर एक प्रार्थना को दोहराते थे।
Okay, any comment or question?
किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न है?
Yes, as loud as possible, unless you get the mic.
Hare Krishna Mahadev, धन्यवाद। Maharaj, I have a question. Raghunath Das Goswami is always eager to progress in spiritual life. So how can we always be eager?
You hear about him, then we become inspired. And that's actually we should hear every day about Krishna and his devotees. So then one becomes, should become enthused to follow in their footsteps. Mahajano yena gata sapanta.
तो प्रजी ने प्रश्न पूछा कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा बहुत उत्साहित रहते थे आध्यात्मिक जीवन प्रगति के लिए, तो यह हम किस प्रकार से इस उत्साह को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो महाराज ने कहा, उनके विषय में सुनकर जितना हम, महाराज कह रहे हैं प्रतिदिन हमें भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के जीवन के बारे में सुनना चाहिए, जब हम उनको सुनेंगे तो इनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित होंगे।
We have these 12 महाजन्स, Shambhu and Narada, Kapila, Janaka, Prahlad, Yamaraj, Shukadeva Goswami. So these are very ancient personalities.
The 12 Mahajan, ये बहुत ही पुरातन समय से हैं.
Yes. So we may, if we think about it, it's not so easy to follow in the footsteps of Shiva or Brahma.
तो अगर आप सोचेंगे तो इतना आसान नहीं है कि शिव जी, ब्रह्मा जी, इनके इनका अनुसरण करना।
So Srila Bhaktivinoda Thakur, he mentions in Bhakti Loka that the Chaitanya Charitamrita, or let's say the associates of Chaitanya Mahaprabhu, are also Mahajans.
शिला भक्ति विनोद ठाकुर ही बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद ऋषि गोस्वामी, ये भी महाजन हैं।
And they lived not so long ago.
और ऐसा नहीं कि बहुत पहले उनका कथा आ रही है, अभी हाल में।
It's not purana, it's not a long, very old and ancient. No, it's only a few hundred years ago.
तो
सिर्फ 500 वर्ष पूर्व का उनका पहला उनकी कथा है जीवन है.
So whatever we find in Chaitanya Charitamrita, for example, the devotees, how they behave and how they relate to each other, these are examples for us to follow.
जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में किस प्रकार भक्तगण आपस में व्यवहार करते थे, किस प्रकार का उनका संबंध होता था, ये सब निर्देश हमारे लिए हैं.
And you have different types of devotees, as Srila Prabhupada pointed out in the purport. Chaitanya Mahaprabhu gave different instructions to different devotees.
तो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, जैसा कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने अंकित किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग निर्देश दिए.
So if you read, you will find at least one that you think, oh yes, this is very similar to what I would like to do or what my situation is, so let me follow in his footsteps.
तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं पार्षदों से आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि हाँ मेरी परिस्थिति इनकी तरह है, तो इनके अकॉर्डिंग मेरे को अपने जीवन का यापन करना चाहिए.
If you have a lot of money, what to do with it? Well, make a big festival like Raghunatha does and invite everybody and distribute prasadam.
अगर आपके पास बहुत धन है तो क्या करना चाहिए? तो रघुनाथ दास को स्वामी जी की तरह बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन कीजिए, सभी को आमंत्रित कीजिए, प्रसादम का वितरण कीजिए.
If you're on the path of renunciation, well, here we have Raghunatha Das Goswami as the high example to at least part of it to achieve.
और अगर आप वैरागी के जीवन से प्रेरित हैं, तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन का हमारे पास ज्वलंत उदाहरण है. सबसे ऊंचा स्तर उन्होंने स्थापित किया, एटलीस्ट कुछ मात्रा में उसको पालन कर सकते हैं.
One simple lesson one can learn: don't make plans to get things and to enjoy life. Depend on Krishna. Whatever comes, we accept.
और एक व्यवहारिक जो आप शिक्षा ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्लान ना करें कई अलग अलग चीजों को ग्रहण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए. भगवान कृष्ण पर आश्रित रहें.
If you look in the world, everybody is making so many plans how to, get as much as possible.
संसार में अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति ये प्लान कर रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को संग्रह किया जाए, इकट्ठा किया जाए.
And as we have also seen many times, yes, people get it and then they lose it again.
और बहुत बार देखते हैं लोगों को मिल भी जाता है, परंतु उसके साथ साथ वो फिर इसको खो भी देते हैं.
So, no, whatever comes, you accept. But this planning, it disturbs the mind, it leads to frustration and all these things.
तो जो भी आता है हम उसको स्वीकार करते हैं, परंतु इसके लिए स्पेशली प्लानिंग करने से मन में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, उसका फ्रस्ट्रेशन भी होती है.
The only planning that is allowed is to plan how to propagate Krishna consciousness.
एकमात्र प्लानिंग जो अलाउड है वो ये है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके.
No plans for my own well-being or improvement of material conditions. That's not so recommended.
व्यक्तिगत के लिए प्लान्स बनाना कि किस प्रकार से मतलब भौतिक जीवन ज्यादा से ज्यादा सुधार सको.
If you listen to Prabhupada, he always speaks about the plan making. So much plan making, and then all the plans ultimately are destroyed by Maya.
Srila Prabhupada अक्सर इस विषय में चर्चा करते थे. इतना सारा plan making चल रहा है और अचानक से माया द्वारा उसका.
The best plan is to dovetail, to connect to the plan of the Lord.
तो सबसे अच्छा plan ये है कि अपने आप को किस प्रकार इस तरह चलाएं कि भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा प्लान बने.
That's the lesson of Bhagavad Gita. Finally, Krishna, Arjuna made his plans. No, you, whatever Krishna want. Okay.
और ये भगवद गीता की शिक्षा है. पहले अर्जुन का अपना अलग प्लान था, परंतु भगवद गीता के अंत में भगवान कृष्ण के प्लान के अकॉर्डिंग वो चल रहा.
You become an instrument, and then whatever Krishna wants, we do that.
एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहे थे.
Okay.
Thank you very much, Maharaj.
Hare Krishna.
It's a very wonderful lecture. It is said, Mahaprabhu gave instructions to Raghunatha Das Goswami, Balana Khaibo. But very often we see in his call that devotees are served very opulent prasad. And slowly we also get used to it and we always expect good. So how to follow
this? Best is that, well, if you're young, you can eat.
तो प्रोजी ने प्रश्न किया कि महाराज, जैसे हम देखते हैं यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास स्वामी को
आदेश दिया कि फलाना खाइब परंतु स्कॉन के अंदर बहुत ही जो प्रसाद होता है बहुत ऐश्वर्यवान होता है और धीरे धीरे उसी की लत भी लग जाती है वही अपेक्षा करते हैं तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि अगर आपका शरीर युवावस्था में है तो आप ले सकते हैं
इट्स कॉमन सेंस इट्स जस्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ
और ये कॉमन सेंस है ये जीवन की सत्यता है ये ऐसा प्रभुपाद द्वारा प्रमाणित है
I say that because then when you get older and you try to do the same thing, not a good idea.
क्योंकि जब आपका शरीर बुढ़ापे की ओर जाता है और अगर आप यही चीज करने का प्रयास करें तो ये एक अच्छा idea.
First of all, you will become fat.
सबसे पहले आप बहुत मोटे हो जाएंगे.
And you become diseased.
और आपके शरीर में रोग आ जाएंगे.
The liver and the heart and the this and the that and so. Opulent prasadam is not so a little bit, but not you know two plates like this.
तो थोड़ी मात्रा में इसका स्वीकार कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि दो प्लेट सामने रखी हैं बड़ी-बड़ी।
We used to do that when we were young, like I speak 40, 50, almost 50 years ago.
तो महाराज कह रहे हैं कि हम ऐसा करते थे जब हम युवावस्था में थे, 40-50 साल पूर्व।
Yes, we had one devotee who also tried to be renounced. During the week he was practically eating.
तो एक भक्त था जो वैराग्य अनुकूल करने का प्रयास कर रहा था बैठे में तो हफ्ते भर में पूरा खाता था
But then when Sunday,
कुछ नहीं खाता था हफ्ते
when Sunday arrived,
परंतु जब रविवार का दिन आता था
Sunday feast served,
तो जब संडे फीस्ट सर्व की जाती थी
he was literally One plate like this, and then another plate like this.
तो ऐसे पूरी की पूरी एक प्लेट भरी होती थी, उसके बाद एक और प्लेट आते थे, पूरी इतनी मात्रा में भरी।
And then after that, he would disappear.
उसके बाद वो गायब हो जाता था।
And if you wanted to find him, you go to the Brahmachari ashram, and everybody was lying on the floor, recovering from the feast.
उसके बाद उसको से वहां ब्रह्मचारी आश्रम में वहां पर जमीन पर सारे बिल्कुल रिकवर कर रहे होते थे फीस से
ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज नॉट मेनी ऑफ दोस रिमेन ब्रह्मचारीज
निश्चित रूप से उसका परिणाम यह था कि उनमें से बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सके फिर
एनीवे व्हाट वाज इट नो आई मीन Yeah, we can follow the example of Raghunath Das Goswami. We cannot imitate. That's important. No anukara, anusara.
Raghunath Das Goswami ji ke jo udharan hai, uska anusaran kar sakte hain, uska anukaran nahi.
You take the essence of the instruction and then according to your circumstance and your reality, you apply it in your life.
तो उनके निर्देशों का सार ग्रहण करें और अपने जीवन की परिस्थिति अपने इस सत्यता से आपके जीवन में क्या सिचुएशन है
Somebody who has a big body and is working very hard, if he eats a plate like this, no problem, he will burn it up.
अगर किसी का शरीर बड़ा है और बहुत मेहनत वाला कार्य कर रहा है और इतना प्रसाद पाए तो उसको इसके लिए दिक्कत नहीं
If I do this because I'm sitting all day long and you know working and writing I will immediately go to sleep and become sick.
परंतु अगर मैं ये करने का प्रयास करूं कि पूरे दिन एक जगह बैठ के मेरी सेवा है और मैं इसको करने का प्रयास करूं मैं तुरंत सो जाऊंगा या बीमार पड़ जाऊंगा
And if the other person would eat what I eat, he would become so weak he couldn't work.
और अगर कोई सामने वाले व्यक्ति मेरा को कॉपी करने का प्रयास करे तो शायद इतना कमजोर पड़ जाए कि वो कार्य ना कर सके
So therefore, common sense is important.
तो इसलिए कॉमन सेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है
Again, thank you all. Very nice to be here. And Srila Prabhupada ki jai, Raghunath Das Goswami ki jai.
His Holiness Gauravani Swami, Bhakti Gauravani Swami Maharaj ki. I would request Maharaj to please bless us again and again. Come here and give us a wonderful association.
As long as Krishna permits, I'll come to this place of the world. And then, of course, if you invite, I'll come.
Thank you so much, Maharaj. Thank you. His Holiness Bhakti Gauravani Swami Maharaj ki Jagat Guru Srila Prabhupada.
Prabhupada ki. There I go, Premanande.
Okay. No.